نمبر 10 آپ کے سامنے ہے، اس سے لنک ہے، پھر لیجئے ایک بار 8, 9, 10 کو پھر لیجئے، یہ آٹھواں ہے، آٹھویں جائے گا، یہاں سے پرارمبھ اس کی سنسکرت ہے پارتھ، یہ نیم ہے ساکرو پرمیشور کے دھیان ابھیاس روپ سے یوگ یکت ہوگی، یعنی پرماتما میں جو نام وہ سنت تتو درشی اس کا ابھیاس بتاؤ گا، اور اس طرح جو کرتا ہوا ابھیاس یوگ سے یکت دوسری اور نہ جانے والے چت سے، یعنی اور دیوتا نہیں پوجائے، کسی اور میں سردا نہ رکھے، نرنتر چنتن کرتا ہوا پرم پرکاش روپ دیو پرش کو ارتھات پرمیشور کو ہی پراپت ہوتا ہے۔ اوئے ہوئے، اپنی تو پہلے بتا دی، میری تو بھکتی کرے گا، میرے پاس رہے گا اور اس کی کرے گا تو اس کو پراپت ہوتا ہے۔ آگے دیکھو نومے میں لکھا ہے کہ جو پرماتما، جو پرمیشور سروج، یعنی وہ سب کا جاننے والا، انادی، سب سے پہلے والا، جیسے وہ مول روپ بھگوان، سب کے نینتتا سوکشم سے اتی سوکشم، سب کے دھارن پوشن کرنے والے اچنت سروپ، سب کے دھارن پوشن کرنے والے، ابھی آپ کو بتایا وہ 15 ادھیائے کے 17 سلوک میں، اور سوریہ کے سدرس نت چیتن پرکاش روپ اویدیا سے اتی پری سچیدانند گھن پرمیشور کا سمن کرتا ہے وہ۔ اب لگاتار ہیں تینوں سلوک 8, 9, 10 آٹھویں ادھیائے کے، وہ ویکت بھکتی یکت پرش سادھک، اس پرماتما کی بھکتی کرنے والا سادھک یوگ بل سے برکٹی کے مادھیم سے پرانوں کو اچھی پرکار ستاپت کر کے پھر نشچل من سے سمرن کرتا ہوا اس پرماتما تم برہم تت برہم، یعنی تم اس دیو روپ پرم پرش پرمیشور کو ہی پراپت ہوتا ہے۔ سپشٹ ہو گیا، کتی دو بھگوانوں کی نیری نیری ویاکھیا، برہم اپنے لیے بتا رہا کہ میری پوجا کرتا تو میرے پاس آئے گا، اس کے پاس جائے گا تو اس کی پوجا کرے گا، اس کے پاس جائے گا، اور لیکن ان دیوی دیوتاؤں کی تینوں گن، رج گن برہما ست گن وشنو تم گن شیو جی، اور اسے نیچے کی پوجا تو مورکھ لوگ کریں، ان بدھینوں کا تو اکشنک سکھ ہے، وہ تو کتی نہ کرنی چاہیے۔ اب دیکھو یہ پویتر گیتا کو سمجھنے کی کمی رہی نہ اس کے گیان میں کسر کتی نہیں، اور جب تک ہمیں یہ ست گیان ہمارے ہردے میں نہیں سما ہوگا تو ہم اس سارے ہی آدھاتمک گیان سے ونچت رہ جائیں گے۔ اب دیکھو، پھر دیکھ لو دو سلوک اور اسے آپ کا بالکل بھرم نوارن پھر ہو جائے گا۔ 15 ادھیائے کا 4 سلوک میں یہ کال بھگوان کہتا ہے کہ جب تجھے وہ پورن سنت مل جائے، اور سارے برمنڈوں اور سنسار روپی ورش کو سمجھانے والا پرم سنت مل جائے، اس سے اپدیش پراپت کر کے پھر اس کے گیان کو پراپت کر کے پھر اس کے پشچات اس پرم پتا پرمیشور کو، 15 ادھیائے کا یہ دیکھو یہاں لو 4th سلوک، اس کے پشچات اس پرم پد روپ پرمیشور کو بلی باتی کھوجنا چاہیے جس میں گئے ہوئے بھگت آتما پرش جنم مرن میں نہیں آتے، جنم مرتو نہیں ہوتا، پھر لوٹ کر سنسار میں نہیں آتے، اور جس پرمیشور سے اس پراتن سنسار ورس کی پرورتی وستار کو ورکش کی سنسار روپی ورکش کی پرورتی، یعنی سبر منڈوں کی رچنا جس نے کی ہے، وستار کو پراپت ہوئی ہے، اسی آدھی پرش نارائن کی، اوئے ہوئے، اس پرم دیو پرمیشور کی میں شرن ہوں، اس کے آدھین ہوں میں بھی اس کا آس ہوں، اس کی شرن میں ہوں۔ سپشٹ لکھا آپ کے سامنے، اور اس پرکار درڑ نشچے کر کے اسی پرمیشور کا منن اور نیتی دھاسن کرنا چاہیے۔ اب پھر دیکھو 18 ادھیائے کا 62 سلوک، اس سے پھر لنک ہوگا، کیونکہ یہ ایسا عجیب و غریب گیان ہے، ایسا سچ کتھا ہے کہ اس کو کئی بار سمجھو گے، کئی بار سنو گے، جب وہ پرانا رنگ یوگوں یوگوں کا ہردے سے ہٹے گا۔ 18 ادھیائے کا اور یہ 62 سلوک، ہے بھارت سب پرکار سے اس پرمیشور کی شرن میں جا، جس کی کرپا سے اس پرماتما کی کرپا سے پرم تو پرم شانتی کو تتھا سناتن پرم دھام کو پراپت ہوگا، ستلوک سے لا جائے گا، جس کے بعد تیری کبھی مرتو نہیں ہوگی۔ اور آگے دیکھو، اب اس کے 63 اور 64 سلوک کو پھر سنو، کیونکہ 18 ادھیائے انتیم سلوک پویتر گیتا جی کا، اور یہ انتیم سلوک لگ بھگ چل رہے ہیں، کیونکہ 78 سلوک میں سماپت ہو جاتی ہے۔ اب 63 سلوک میں کہتا ہے کہ یہ سارا گیتا کا گیان گوپت سے گپت تھا، یہ تیرے تو ہی بتا دیا ہم نے، اس پرکار یہ گوپنی یعنی گوپت سے گپت گیان میں نے تجھ سے کہہ دیا، اب تیری سمجھ میں آوے نو کر لے، اب میری پوجا کرنی ہے تو میری شرن میں آ جا، इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति समझकर विचार कर जैसे चाहता है वो ऐसा कर ले। मेरी पूजा करनी है तथा हथियार युद्ध भी कर और स्मरण भी कर, और उसकी शरण चाहता जाना है तो उस परमात्मा के पास उस संत न ढूंढ ले, फिर मेरी पूजा मुझ में छोड़ कर उसके पास चला जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूं। अब आगे देखो 64 में मैं क्या कहा कि एक और गुप्त बताऊं, मेरा पूज्य देव भी वही है, मैं उसकी पूजा करता हूं, वो मेरा भगवान है। संस्कृत देखो, ये हिंदी नहीं समझ में आएगी आपके, क्योंकि इन संतों ने ये ज्ञान नहीं था पूरा। सर्व गुहेतम, सबसे गुप्त गुप्त और गुप्त बताऊं, भूय माने दोबारा, सुनो माने सुन, मे माने मेरे, परम माने विशेष, वच माने वचन। अब मेरे और गुप्त गुप्त विशेष वचन और सुन ले, क्या बताना चाहता हूँ कि मेरा पूज्य देव भी वही है। इष्ट में असी, संस्कर देखो, बालक तो बालक समझ जाए इसने, इष्ट माने इष्ट देव, असी माने है, मे माने मेरा, दृढ़ माने पक्का, नो डाउट, इति माने यही, जिसकी तरफ मैं तेरा संकेत कर रहा हूँ कि वो भगवान की शरण में चला जा, मेरा भी ये पक्का। इष्ट माने इष्ट देव, असी माने है, मे माने मेरा, दर्डम इति, यही जिसकी तरफ मैं संकेत करता हूँ, ये मेरा भी पक्का, नो डाउट, निसंशय मेरा पूज्य देव है। तत्वक्षामि ते हितम, ये तेरे हित में कहूंगा, मैंने आज तक किसी को नहीं बताई यह बात। अब ये क्या लिखा, इन्होंने थोड़ी सी गलती अपने हिसाब से कर दी कि संपूर्ण गोपनीयों से भी गोपनीय, क्योंकि एक तो ऊपर बता दिया 63 में कि इस प्रकार ये गोपनीय से गोपनीय ज्ञान मैंने तुझे कह दिया, ये तो कह दिया कि जब मेरी शरण में आना तो मेरी भक्ति कर, उसकी शरण में जाना उसकी कर, ये गुप्त ज्ञान बता दिया। अब फिर कहा कि और गुप्त से गुप्त, संपूर्ण गोपनीयों से गोपनीय है, मेरे परम वचनों को और सुन, फिर सुन। अब यहाँ अगर ये ढंग से कर देते ना, मे माने मेरा, अतिशय माने पक्का, इष्ट माने पूज्य देव है, अले सारी कहानी हो जाती। इष्ट माने पर ये कर दिया, इष्ट माने पूज्य देव लिखना था कि मेरा पूज्य देव यही है जिसकी तरफ मैं तुझे संकेत कर रहा हूँ, सारी कहानी ठीक हो जाती। ऐसे ये बात आपके अब समझ में आएगी, कोई बात नहीं। पहले भी हम गीता को एक अनमोल शास्त्र जानकर संतों द्वारा उसकी टिप्पणी जैसी उनकी सोच ने काम किया हमें बता दिया, हमने फाइनल कर ली। अब हम इनको पढ़ भी सकते हैं, हमारे शिक्षित बहन भाई बुजुर्ग सारे, कोई बालक को नहीं जिनको टोपी देगा बड़ो ले भी। हमारे पुरुष तो बोली आत्मा थी, जिनने जैसे उनको बताया उनने मान लिया, उनके आधार पर हम आगे चल रहे। हमने कोई इतना सोचने की आवश्यकता है ना समझी कि इसे महापुरुष हो ऋषि जन, उन्होंने ठीक निर्णय ले रखा होगा, लेकिन नहीं, ये तो ज्ञान किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये मूल शास्त्र सबके लिए है। मूल ज्ञान इनमें सही है, लेकिन संतों के द्वारा दी गई सोच वो इनसे सही नहीं मिल रही, वो फिर ठीक करेंगे। और फिर देखिए पूरा पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार एक परम पिता पर आधारित होकर अपना कल्याण करवा होगा, ये ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि परमात्मा हमारा एक है, ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान, सिख, ना ईसाई, हम एक पिता की संतान, हमारा भगवान एक, हमारे चारों पवित्र शास्त्र चारों धर्मों के एक का बात बताएं, वो सामने दिखाऊंगा आपको, कति पिक्चर के ऊपर दिखाएंगे चारों धर्मों के अंदर क्या क्या लिखा है। बोलो सतगुरुदेव की,
बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, सत सहि गरीब नमो नमो सतपुर नम सुकर गुरु के नहीं, सुर नर मुनि जन साहद्वा संतों सर्वस दीन, सतगुरु शायब संत सब है डंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान, निराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम, निर्लेपम निज निरगुणम अकल अनुपबेशन दुनम, सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतल, उज्ज्वल हिरंबर अर्दमम बेपरवा अथा है, वार पार नहीं मध्य तम, गरीब जो सुमर सिद्ध होई, गण नायक गलताना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊ गण नायक देवन देवा चरण कमल लोला आद अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पुं शीशम मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे तेतीस कोटि धारा जावे शेष अठासी उतर भव जल पारा कट है यम की फांसी तेतीस कोटि आदारा जावे शेष अठासी उतर भव जल पारा कट है यम की फांसी कर जोरू विनती करू धरू चरण पर शीश गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश कोटि कोटि सजदा करू कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो में बांधी जाम गुलाम पूता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चोहा जाऊं मैं तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं जो रखो तो ही रहूं जो देवो सुख मैं अपराधी जन्म का नक्षक बरे विकार तुम दाता दुखे भंजना मेरी करो संवर अवगुण किए तो बहुत किए करत न मनी हारे बावे बंदा बख्श दियो हो बावे गर्दन उतार अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज जो मैं पोत कपोत हूँ बहर पिता को लाज सुरत करो मम साइया हम हैं बव जल माही आपे ही बह जावांगे जो तुम न पकड़ोगे परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम रजा से इस पवित्र नगरी दिल्ली के अंदर ये अमर कथा 6 अप्रैल सन 2004 से प्रारंभ हुई जिस पुण्य नगरी के पुण्य उदय होते हैं वहां पर संत समागम प्रारंभ हुआ करते हैं और जो पुण्यात्मा ऐसे शुभ समागम में आने का सुअवसर प्राप्त करती हैं वो बहुत ही पुण्यकर्मी और शुभ संस्कारी हंसात्मा हुआ करती हैं कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ये सत्पुरुष है सत्पुरुष मीन अविनाशी परमात्मा सत्य माने शाश्वतम
सदा रहने वाला जिसका कभी अस्तित्व समाप्त न हुए उसे सत कहते हैं। और पुरुष माने प्रभु भगवान सत पुरुष, अविनाशी परमात्मा सत्यनारायण, सत्यनारायण माने अविनाशी भगवान, अकाल मूर्त जिस प्रभु का स्वरूप, क्योंकि परमात्मा मनुष्य जैसा है आकार में है, जिस प्रभु का स्वरूप कभी काल के वश ना हो, जिसका कभी काल ना आवे उसे अकाल पुरुष कहते हैं। शब्द कभी खंड नहीं होता, वो सत्य होता है। शब्द स्वरूपी राम अर्थात अविनाशी प्रभु, राम कहो गॉड कहो अल्लाह कहो चाहे खुदा कहो, ये प्रभु के पर्यायवाची और भाषा भिन्न नाम होते हैं। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, वो सत्पुरुष स्वयं ही इस काल के लोक में आते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि रचना को वही स्वयं बताते हैं और हमें ये ज्ञान देते हैं कि तुम इस काल के जाल में फंसे हुए हो और जन्म और मृत्यु में तुम असंख्य युग से पीड़ित हो। उस परमपिता के बिना कोई हमें ये नहीं बता सकता हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमारा वास्तविक ठिकाना कहां है। जो पुण्यात्मा कल से सत्संग में आ रहे हैं उनको ये तो पता लग गया होगा कि कौन परमात्मा कौन प्रभु कितने सतीथि के हैं, और ये भी पता लग गया है कि कुल मालिक कोई और है, जो जिसमें गीता बोलने वाले भगवान भी संकेत कर रहे हैं और आपको वेदों में भी प्रमाण दिया जाएगा, वेद भी यही संकेत करते हैं जो गीता जी कर रही है। वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहां है, उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये भी जानकारी इस चार दिन के सत्संग में आपको बहुत कुछ दी जाएगी। वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म स्वयं ही आकर के एक दास बनते हैं, स्वयं ही भक्त बनते हैं और स्वयं ही परमात्मा का रोल भी करते हैं। वो हमें क्या समझाना चाहते हैं कि लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे प्राण जाएंगे छूटे। लूट सको तो लूट लो राम नाम की लूट। अब जब ये राम नाम आता है तो हिंदू समाज के भक्त आत्माओं के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी की तरफ आस्था बढ़ जाती है कि ये राम जो है वही राम जो भगवान श्री राम को हम राम मान लेते हैं। देखो पहले हमने राम की परिभाषा से परिचित होना पड़ेगा, प्रभु की परिभाषा से। राम कहते किसे हैं? राम एक शक्ति बोधक शब्द है, उसे राम कहो चाहे साहेब कहो, अल्लाह कहो भावे गॉड कहो, रब कहो चाहे खुदा कहो, ये एक भाषा भिन्न और पर्यायवाची शक्ति बोधक शब्द है। जैसे एक प्रांत में मंत्री होता है, एक प्रांत में मुख्यमंत्री होता है, उसके अंतर्गत कई मंत्रीगण होते हैं, मंत्री भी साहेब है, मुख्यमंत्री को भी मुख्यमंत्री साहेब कहा जाता है और प्रधानमंत्री जो कई एक मुख्यमंत्रियों के ऊपर पावर होती है शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री भी साहब कहलाता है और राष्ट्रपति को भी साहब कहते हैं। लेकिन इन साहबों की इन स्वामियों की इन मालिकों की शक्ति में दिन और रात का अंतर होता चला जाता है। ठीक इसी प्रकार तीन लोक के भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, 21 ब्रह्मा और तीन लोक के एक एक विभाग के मंत्री एक ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड में एक एक विभाग के मंत्री मिनिस्टर हैं, ये भी साहब हैं, राम हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी राम हैं, इनके पिता 21 ब्रह्मांड के राम हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री हैं, ये भी मालिक हैं, इनकी भी शक्ति है और इनके पिता मुख्यमंत्री का रोल करते हैं हर ब्रह्मांड में, 21 ब्रह्मांड में कुल। ये 21 ब्रह्मांड का ये काल राम है, ब्रह्म राम है, ब्रह्म साहिब है और सात संग ब्रह्मांड का राम खुदा जो है राम साहिब को ये परब्रह्म है अर्थात अक्षर पुरुष है। और असंख्य ब्रह्मांड का और साथ में इन काल के 21 ब्रह्मांडों का साथ में परब्रह्म के साथ संग ब्रह्मांड के ऊपर भी और अपने भी असंख्यों कुल मिलाकर इन्फिनिटी असंख्य ब्रह्मांडों का कुल राम कुल मालिक वो पूर्ण ब्रह्म है, सतपुरुष है। अब फिर देखिएगा क्योंकि हर सत्संग में नई आत्मा आती है और उनको ये भूमिका नहीं मिलेगी तो वो इस 2 घंटे के सत्संग का आनंद प्राप्त नहीं कर सकेंगे, विचलित रहेगा उनका दिमाग। ये देखिएगा एक ब्रह्मांड है, इसको अंड भी कहते हैं क्योंकि इसका आकार अंडे जैसा है सारे के सारे का, और इसको पेंड कहते हैं क्योंकि पेंड शरीर को बोलते हैं संत भाषा में पेंड, और ये पेंड जो है शरीर है, इस शरीर के अंदर एक ही ब्रह्मांड की जानकारी है अन्य की नहीं है, इसी को अंड इसी को ब्रह्मांड इसी को पेंड भी कहते हैं। ये एक ब्रह्मांड है, पीछे करो ये एक ब्रह्मांड है, ऊपर कर दो नीचे कट रहा, ये एक ब्रह्मांड है, इकट्ठे ना दे इनको साफ रखें, ये एक ब्रह्मांड है और इसमें ये एक ब्रह्म लोक अलग से इस काल भगवान ने, क्योंकि ये ब्रह्म जो है इन 21 ब्रह्मांडों का मालिक है, इसने ऐसी अपनी राजधानी अलग से बनाई है, इसमें ये स्वयं यहां महाविष्णु रूप में रहता है और दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है, यहाँ पर जो पुत्र होता है इन दोनों के सहयोग से उसका उसको ये सतोगुण बनाकर और विष्णु नाम रख देते हैं, फिर इसको बेहोश कर देते हैं। उसके बाद ये तमोगुण प्रधान अक्षेत्र है, इसमें ये स्वयं सदाशिव महाशिव रूप में काल रहता है, ब्रह्म रहता है क्षर पुरुष और दुर्गा को महापार्वती रूप में रखता है। यहाँ जब इन दोनों के सहयोग से जो संतान उत्पत्ति होती है पुत्र, उसका नाम ये रुद्र और तमोगुण बना देते हैं, नाम रुद्र रख देते हैं। और जब ये इस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में निकट लो, जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ये दोनों रहते हैं दुर्गा और ये काल, ये मां ब्रह्मा के रूप में रहता है, दुर्गा को मां सावित्री रूप में रखता है, यहां इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको रजोगुण बना देते हैं और उसका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। उसके बाद इन तीनों पुत्रों को जब ये सियाने बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तब तक बेहोश रखते हैं और इनकी परवरिश जारी रखते हैं। इसके बाद इन तीनों को यहां लाते हैं, नीचे इनके 3 द्वीप और बना रखे इस ब्रह्मलोक तैयारी, यहां विष्णुलोक, इसमें इनका पुत्र ब्रह्म काल का पुत्र विष्णु साथ में इनकी शादी कर दी जाती है, ये लक्ष्मी रूप में एक इनके शादी कर दी जाती है, और यहां ब्रह्मा और सावित्री और विष्णु और शंकर और पार्वती, इन तीनों के 3 अलग से राजधानी बनाकर ये तीनों भगवान ये तीनों मंत्री अपनी यहां राजधानियों से इन 3 लोकों के ऊपर कंट्रोल करते हैं, एक एक विभाग के मंत्री हैं। ये पृथ्वी लोक जिसमें हम बैठे हैं, स्वर्ग लोक और ये नीचे पाताल लोक, इनमें इन तीनों में एक एक विभाग के मंत्री हैं। जैसे रजगुण विभाग, रजोगुण के दबाव से जीवों की उत्पत्ति करवाना भगवान ब्रह्मा का अक्षेत्र है, यानी इसका विभाग है, और फिर संसारिक सुखों के ऊपर ये सारा जीवन बर्बाद कर देना, लगा रहना, ये इस गुण के प्रभाव से ये जीव कंट्रोल्ड होते हैं इनके द्वारा। और विष्णु जी का सतीथी बनाए रखना है, एक दूसरे मोह ममता पैदा करे रखना, अंतिम श्वास तक मृत्यु तक इसका दिल यहां से हटे नहीं, और शंकर भगवान का काम यहां से मृत्यु कर देना, इन तीनों भगवानों का एक एक विभाग का ये मंत्री है इस एक ब्रह्मांड में। अब इस काल भगवान के ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र, ऐसे ऐसे इस काल भगवान के ज्योत निरंजन के 21 ब्रह्मांड हैं। ज्योत निरंजन अर्थात काल ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र ये देखिएगा। ये मानो कोई सा भी एक इनमें से आपने देखा, इन सब में एक जैसी सचिची है। ये पांच ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना के एक महाब्रह्मंड बनाया हुआ है। ऐसे ऐसे चार महाब्रह्मंडों में 20 ब्रह्मांडों को रोका है और इनमें प्रत्येक में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव, एक विभागीय मंत्री होते हैं और काल स्वयं इनमें एज ए चीफ मिनिस्टर रोल करता है, मुख्यमंत्री बना रहता है इनमें। और फिर यहां से अलग इसने एक लोक, एक महाब्रह्मंड जितना स्थान लेकर ये भी बना रखा है अलग से अपनी राजधानी। अब ये 21 ब्रह्मांड हुए और ब्रह्मा विष्णु महेश केवल एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री हुए, ये भी पावर रखते हैं लेकिन इस परम पिता की तुलना में। अब देखिए ये कहां से स्थिति है इन भगवानों की, जब ये ज्ञान होने से जानकारी हुआ करती है। अभी आपने देखा ये ज्योत निरंजन काल के 21 ब्रह्मांड ये हैं और जिसमें इस एक ब्रह्मांड में किसी एक में लीजिए ब्रह्मा विष्णु महेश एक विभाग के मंत्री एक एक विभाग के, और ये सात संग ब्रह्मांड ये ब्राउन कलर जो दिखाई देता है इसमें छोटी छोटी टिक्कियां नजर आती है बिंदी सी, ये जो है ये सात संग ब्रह्मांड इस परब्रह्म के हैं अक्षर पुरुष के, और ये कुल मालिक असंग ब्रह्मांड इस पूर्ण ब्रह्म के सतपुरुष के कबीर परमेश्वर के कबीर देव के असंग ब्रह्मांड है। अब यहां देखिएगा राम तो साहेब ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी राम है, इनके पिता काल भी इतने क्षेत्र के राम है और ये परब्रह्म भी केवल इतने क्षेत्र का राम है और ये इन्फिनिटी यहां भी अंत नहीं है, यहां भी अंत नहीं है और ये ऊपर भी अलख लोक अगम लोक अनामी लोक में भी यही परमेश्वर स्वयं ही अन्य रूप धारण करके अपना कार्य करता है। ये कुल मालिक कबीर देव है। अब ये समझ में आया कि पहले तो कबीर साहब कहते हैं राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबो तो दीन दयाल के बिनक पड़गी कान, राम नाम रटते रहो। अब ये देखना कि कौन से राम का नाम रटे हैं। जैसे पवित्र गीता जी में आपने सुबह भी सुना आपने कल भी सुना और आंखों देखा भी अपने इस प्रोजेक्टर के ऊपर के सातवें अध्याय के 12 से लेकर 15 और 20 से लेकर 23 श्लोकों में स्पष्ट किया है कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी की पूजा नादान व्यक्ति करते हैं और अन्य देवताओं की पूजा भी मूर्ख लोग करते हैं क्योंकि उनका अक्षीणिक सुख प्राप्त करके शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। फिर ये ब्रह्म गीता बोल रहा है, कहता है कि मेरी भक्ति भी अनुतम है लेकिन और देवताओं से मेरी अच्छी है, हजार गुना अच्छी है। ब्रह्मा विष्णु महेश से तो ब्रह्म साधना हजार गुना अच्छी है लेकिन मेरी भक्ति भी अनुतमाम घटिया तो घटिया, क्योंकि जन्म मृत्यु मिटे नहीं, कर्म दंड कटे नहीं, तो फिर के भक्ति हुई, कुछ भी कोई ना। फिर बताया कि वो परमात्मा परब्रह्म की भक्ति भी अनुतम है क्योंकि वो विनाशवान है लेकिन अविनाशी परमात्मा कोई इन दोनों से परब्रह्म और परब्रह्म से भी कोई और है, वही पूजा के योग्य है। गीता बोलने वाला भगवान कहता मैं भी उसी की पूजा करता हूं। तो उस राम की पूजा हमने करनी है जिसकी सभी करते हैं और उसी की पूजा से हमें पूर्ण लाभ होगा। जैसे एक कैसा है सब सद सब साध्य सब जावे, एक कैसा दे सब सद है, जैसे सुबह भी दिखा था फिर दिखाएंगे क्योंकि ये एक कैसा दे सब सद है। जब हम पौधा लगाएंगे भक्ति रूपी तो इस जड़ को मिट्टी में या गमले में लगाकर उसकी सिंचाई शुरू करेंगे, पूजा शुरू करेंगे, तो अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वाकी डार, ये निरंजन ब्रह्म क्षर पुरुष ये डार है। इसके तीन बेटे हैं, तीन शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी। रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी ये तीनों देवा शाखा हैं, तीनों गुण रूपी शाखा हैं और ये पात्र रूप संसार हम यहां बैठे हैं। अब क्या बताया है, एक कैसा दे सब सद है, ये तना जो है ये परब्रह्म है, अक्षर पुरुष है, इसको परब्रह्म भी कहते हैं। ये तना अक्षर पुरुष परब्रह्म समझो इस पौधे का, और फिर ऊपर ये डार ब्रह्म क्षर पुरुष है, और ये तीनों देवा शाखा ब्रह्मा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी और पात्र रूप संसार कबीर परमेश्वर अपने द्वारा रची हुई मां को आपको बता रहे हैं। अब हम क्या कर रहे थे, अब हमने करना था ऐसे कि एक के साधे सब सद है, और हम ऐसे करने लगे, देवताओं को पूजने लगे, ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजने लगे, मूल छोड़ दिया, उल्टा पौधा हो गया तो व्यर्थ हुआ। यही गीता जी बताती है कि वो नादान आत्मा कभी सफल नहीं हो सकते। एक कैसा दे सब सद है, सब साधे सब जावे, माली सिचे मूल को तो यहाँ फल फूल गावे। अब ऐसे करना हमने, और कुछ भी नहीं, ना छोड़ना है ना कुछ करना है, हमने ऐसे करना जैसे अपनी पवित्र गीता बतावे, क्योंकि गीता जी एक ऐसा शास्त्र है ना किसी मजहब या जाति से कोई संबंध नहीं इसका, ये तो उसमें रचा गया था, उसमें ना कोई हिंदू था ना मुसलमान सिख ना ईसाई। तो हम जो इस गीता के अनुसार साधना नहीं करते, वेदों अनुसार साधना नहीं करते, हम शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, और शास्त्र विरुद्ध विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं वो न तो कभी सुख को प्राप्त होते हैं और न ही उनकी गति होए और न ही उनको कोई लाभ होए, अर्थात यूजलेस कति व्यर्थ। फिर देखो, क्योंकि एक ऐसा सामूहिक शिक्षा स्थल है जिसमें पहली क्लास से लेकर पीएचडी तक के बच्चों को यही पढ़ाया जाता है। जो प्राणी जो रोजाना सत्संग सुन रहे हैं उन पुण्यात्माओं को गदगद होना चाहिए, बार बार सुनोगे तो यह बात समझ में आएगी। जैसे पहली क्लास के बच्चे को 100 बार समझाना पड़ता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक, सी फॉर कैट, और 20-20 बार रट्टे लगवाने पड़ जाते हैं, जब वो कितना समझ में आने योग्य होती है बातें। ऐसे ही ये एक ऐसा निर्मल ज्ञान है, जितनी बार सुनोगे उतना आनंद आना चाहिए आपको, क्योंकि भक्त आत्मा को प्रभु की प्यास होती है और कथा से वो कभी ऊबते नहीं। अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 23। जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कहे, मनमाना आचरण करते हैं, मनमाने मंत्र बना लिए, मनमाने धोक पूजा कर ली, मनमाने तीर्थों पर चक्कर लाने लगे, कहते हैं वो मनमाना आचरण करते हैं, वह न सिद्धि को प्राप्त होते हैं, न परम गति को और न सुख कोई। अब देखो, इसलिए अर्जुन तेरे लिए, ये 24वां श्लोक 16वें अध्याय का, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है और मत करना। अब ये पवित्र शास्त्र तो बोला जा रहा था और वेदों की तरफ संकेत है। अब इस पवित्र शास्त्र में क्या मना किया है, तीनों देवताओं की पूजा मना किया है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, उसके साथ साथ क्या मना किया है, भूत और पितरों की सरहद निकालना, भूत पूजा पिंड भरवाना, चौराहे की पूजा करना, ये भी मना किया भगवान ने। आप देखो अध्याय नंबर 9 का श्लोक नंबर 25 इसी पवित्र गीता जी का, श्लोक नंबर 25 में स्पष्ट किया है कि देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों के, ये श्राद्ध निकालने वाले पितरों के पूजने वाले पितर बन जाते हैं, भूत पितर भी सुपीरियर क्वालिटी के भूत होते हैं, यानी इन आम भूत से थोड़ी सी अच्छी तगड़ी क्वालिटी इनकी अच्छी इम्प्रूव्ड है, लेकिन है ये भी भूत। पितर यानी श्राद्ध निकालने वाले पितर बन जाते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूत पूजने वाले ये पिंड भरवाना, इनके महीने 8, 13, 6, 7 मनाना, ये जो कहते हैं ये भूत पूजने वाले चौराहे की पूजा और फिर उनका उनके कपड़े देना, उनके उस तरह की जो पूजाएं हैं ये भूत पूजाएं हैं, भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं, मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब क्या सिद्ध कर दिया कि जो श्राद्ध निकालते हैं वो भूत पूजा यानी पितृ पूजा है और जो श्राद्ध निकालते हैं तो वो आने वाले समय में वो श्राद्ध निकालने वाले भी पितृ बन जाते हैं। यही कारण रहा कि हमारे को अभी तक हमारे पूर्वजों को शास्त्र के विरुद्ध साधना करवाई जाती रही। वो बोली आत्मा थी और उनको भावुक कर देते थे कि आपका पिताजी मुझे वो गुरु लोग बकाया करते, आपका पिताजी दिखाई दिया था मुझे और उसके पास कपड़े नहीं, पांचों कपड़े दो, उसके पांचों कपड़े खुश होकर देते, पिताजी को कपड़े मिलने चाहिए, पहनते गुरुजी और बहाना पितरों का। तो ये सब बनावटी बातें बनाएगी। तो क्या कहा है कि जो श्राद्ध निकालते हैं ना, जो ये गलत पूजा है, गीता मना करती है हमारी पवित्र शास्त्र, तो ऐसा हम कर रहे हैं तो प्रभु का आदेश तोड़कर हम फिर उसका दुख उठा रहे हैं। और पिंड भरवाना, फिर वो फूल उठाकर ले जाना, फिर उसके गया जी में पहुंचना कि तो पंडारे ले जाना, ये सब भूतों की पूजा, चौराहे की पूजा, किसी बार मड़ी बनाकर पूजा करना किसी देव की, तो ये भूत पूजा होती है। इसको क्या बताया है कि देवताओं के पूजने वाले देवताओं के पास जाएंगे, जैसे विष्णु जी का उपासक विष्णु लोक में, शिव का उपासक शिव लोक में, ब्रह्मा का उपासक ब्रह्मा के लोक में, और अपनी खाकर मड़ाई पुनों की फिर नरक में, और फिर पशु बनेगा 84 में कुत्ता व गधा बने। और फिर क्या बताते हैं, पितरों के पूजने वाले पितरों के पास ले जाएंगे, वो पितर बन जाएंगे। अब हमारे पूर्वज शास्त्र विरुद्ध साधना करके सारे पितर बने और फिर उनकी हमने पूजा करी, हमारे माता पिता ने करी, फिर माता पिता भी पितर बने, फिर हम शुरू हो गए थे हम भी पितर बनने थे। अब इसलिए गीता विरुद्ध साधना करके हम अपना हानि उठा रहे हैं, लाभ कति नहीं, क्योंकि अभी बताया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं वो न किसी उनको परम सिद्धि होती है, ना कोई परम गति, ना कोई सुख होए। अब ये पितरों की पूजा, श्राद्ध निकालना कहां से प्रारंभ हुआ, इन पितरों के संकेत तय, पितरों के आदेश तय, या किसी ऋषि आदि, ऋषि आदि के कहने तय हमने वो शुरू कर दिए, जबकि भगवान का आदेश नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति का गांव में एक व्यक्ति का दोस्त SHO था, थानेदार, और उसने उस व्यक्ति ने अपने दोस्त से कहा कि मेरा एक पड़ोसी है मुझे बहुत तंग कर रहा है, नाक में दम कर रखा है उसने, रोज परेशान करता है, शराब पी कर गाड़ी देता है, कभी कुछ करता है, तो क्या क्या इलाज करूं। SHO बोला कि मार लठ सिर में, माफ देख लूंगा, बोला दो मार लठ उसके, माफ देख लूंगा। अब थानेदार की पाक ठाड, SHO का पाक सहारा, उसने जाकर अपने पड़ोसी का लठ मारा, उमारते मर गया। मर गया तो वो एक दोस्त थानेदार उसका छकड़ी लगा के लिया, अंदर कर दिया ठाके, फांसी टूट गया। ये आदेश किसका था, एक व्यक्ति विशेष का, एक व्यक्ति विशेष का आदेश था, लेकिन राजा का आदेश नहीं था। हमने राजा का आदेश मानना है, किसी व्यक्ति विशेष का आदेश यानी किसी अधिकारी विशेष का हमने आदेश नहीं मानना। अगर वो संविधान के विरुद्ध है तो चाहे वो कुछ भी सरपट कहे, तो उस इसी प्रकार जैसे ही दास आपको दिखाएगा एक मार्कंडेय पुराण जिसमें क्या लिखा है, मार्कंडेय पुराण में एक रुचि नाम का ऋषि है और उसने शादी भी नहीं कराई, वेदों को पढ़ा, वेदों अनुसार अपनी साधना शास्त्र अनुकूल साधना कर रहा था, ओम नाम का जाप जपे था, और उसने सोचा भाई क्यों खाम का पंगे में पांच दिया, ना शादी करवाता मैं तो अपनी भक्ति करके बेड़ा पार करवाऊंगा। जब हो गया वो 40 वर्ष की उम्र का, इसमें लिखा है कि उसके चार पीढ़ी के पितर बने हुए, पितर दिखाई दिए, पिताजी, दादा, पड़दादा और फिर तीसरा दादा, और वो कहने लगे बेटा रुचि तूने शादी क्यों नहीं कराई, तू शादी कराता करा, शादी करवा के फिर हमारे पिंड हमारे जो है ना सरहद निकाल। अब रुचि ऋषि कहता है पितामहो इस पिंड यानी सरहद आदि निकालने को यानी पितरों की पूजा को इस कर्म कांड को वेदों में मना किया है और मूर्खों की पूजा बताया है, फिर आप क्यों मुझे इस गलत काम में लगा रहे हो। और इस बात को पितर भी मानते हैं कि बेटा ये बात तेरी सही है कि वेद में इस तरह श्रुद निकालने को अविद्या कहा है यानी मूर्खता कहा है, फिर भी क्यों, फिर भी का क्या तात्पर्य, अड़गम सड़गम अपनी अपनी अटकल लड़ा के फिर भी कहा है ऐसा है वैसा है, पितर ये कर देते हैं, पितर वो कर देते हैं, पितर पुत्र दे देते हैं, पितर आप भूखे मरे नो मरे सराद निकाल बता पितर के दे देते हैं। जब गीता में वेद मना करते हैं स्वयं स्वीकार करते हैं वो पितर और स्वयं भूत बन गए और बेटे को और परेशान मजबूर कर रहे हैं। अब देखो आपके सामने पवित्र शास्त्र ये मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। कल्याण कार्यालय गीता प्रेस गोरखपुर और इसके यहां देखो 237 पृष्ठ पे या नीचे देखो पितर बोले बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्य कर्म होता है, उसे तुमने क्यों नहीं किया यानी विवाह क्यों नहीं किया। गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं पितरों ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त होते हैं, मुक्ति नहीं पुण्यमय लोकों को, और फिर वहां के अपने कर्म बिगाड़कर फिर नरक में जाती है। न्यूना लिखा गया वह श्रद्धा के उच्चारण से देवताओं को स्वभा के उच्चारण से देवताओं को श्रद्धा शब्द से पितरों से को तथा अन्नदान आदि देवों को आदि आदि से भूत आदि प्राणियों के एवं अतिथियों से को उनका भाग समर्पित करते हैं। अब देखो फिर लिखा है कि श्राद्ध आदि निकालना, श्राद्ध पितरों को अनादि से पितरों का ये श्राद्ध आदि निकालना, तो यहां फिर क्या लिखा है, रुचि ने कहा पितरगणों ये सारे दुख रोवे है कैसा ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर यहां देखो अब ये पितर देखो इनके चारों पितर दिखाई देते हैं, पिता भी दादा भी परदादा भी और चौथा दादा भी, ये चारों कह रहे हैं कि बेटा तू ब्याह कर ले और शादी करवा के अपना हमारे श्राद्ध निकाल। रुचि कहता पितामहो ये देखो अब ज्यादा ना बता के आप पढ़ सकते हो। रुचि ने पूछा पितामहो वेद में कर्म को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हो। रोता हुआ कह रहा रुचि। और फिर पितर बोले यह सत्य है कि कर्म को यानी श्राद्ध श्रुद्ध निकालना भूतां की पूजा अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर के रह गया फिर आगे फिर भी इतना तो निश्चित है कि उस विद्या की प्राप्ति में कर्म ही कारण है, फलाना है तगड़म है, ये तो अपने इनके अपने आदेश है और भगवान का आदेश वेद है, उसके विरुद्ध कर रहे हैं तो थानेदार वाला लठ है, बस फिर तो दुख है दुख उठेंगे। ये भी पितर बनेंगे, पेट बने हुए हैं और ये बेटा भी पितर बनवाओगे, बनवा दिया। अब चार चार भूत दिख जा पिछले तो कल जा पलट जा आदमी का। रुचि बोला ठीक है जैसे कहोगे नहीं कर लूंगा मैं, तो भगवान का आदेश तो डुबा दिया उन्होंने अपने अपने वंशजों को भी ले डूबे। आप तो गलत साधना करके पितर बन गए और साथ में ये पोड़ी आत्मा जो ठीक रास्ते पकड़ रहा था वो भी डबो लिया गया साथ में। तो अब ये हमने फिर सोचना होगा, कोई ये बड़कों का लेख नहीं है गीता जी के बच्चा ने वैसे लिख दिया होगा किसी ने, और ये तो जो पुराण है ये किसी ऋषि विशेष के या ब्रह्मा आदि भगवान के अपने लेख हैं। जैसे ब्रह्मा ने बता दिया ऐसे हुआ वैसे, ठीक है इन्होंने जितना देखा वो बता दिया, लेकिन फिर ये भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि हमने और नहीं बेरा और खुद ये भगवान ब्रह्म भी कह देता है कि मैं भी उस परमात्मा के बारे में पूरा नहीं जानता। लेकिन ये संविधान जो गीता में लिखा है, पूजा की विधि, कौन सी पूजा ठीक है कौन सी गलत है, स्पष्ट वर्णन है। तो अब हमने इस गीता अनुसार साधना करनी है, फिर ना तंबूत बने ना पितर बने, ना फिर सरहदों की आवश्यकता, ना फिर पिंड बनवाने। सीधी सी बात है, अब इसके विरुद्ध आज भी वर्तमान के संतजन बल्कि और बढ़िया विधि बताते हैं श्राद्ध निकालन की, जबकि मना कराना चाहिए था, बच्चों ये गलत साधना मत करो। इन्होंने तो ये तरीका बना रखा है कि तुम्हारी रोजी रोटी बनी रहे, तुम्हारी महिमा बनी रहे, बहुसंख्या में लोग इकट्ठे हो जाए, तुम्हारी प्रभुता बन जा। यहां इस दास ने कती जरूरत नहीं। हम परमात्मा से डरते हैं, हम सयाने हो गए, वो नादान है अनजान है जो शांता भी गलत मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनको डर नहीं लग रहा कि तुम इतने दोषी हो कि तुम्हें ठिकाना नहीं मिलेगा नरक में भी, कि तो अलग बनाना पड़ेगा परमात्मा ने। कहने का भाव यह है कि जब बच्चा नादान होता है वो सर्प भी पकड़ ले, अग्नि में भी हाथ दे दे और बिजली के तार का हाथ लगा दे, और जब समझदार हो जाता है फिर सर्प का नाम लेते दूर कूद जाएगा, एक फुट तक निकट ना आ गया हो, और कोई नहीं कहते ये तार पड़ा है इसमें बिजली है तो एकदम दूर हो जाएगा, क्योंकि उसको ज्ञान हो चुका है। अनजानपने में गलतियां हो जाती है, लेकिन निशाना हो जाना चाहिए। हम बालक नहीं रह रहे, पहले हमारे पूर्वज अनजान थे, नादान थे, उनको पता नहीं था, बोली आत्मा थी, जैसे भी कोई कह देता था वो सत्य मान्या करते, क्योंकि उनमें कपट नहीं था, और वो जो गुरु लोग थे वो कपटी गणे थे, उनको अपना स्वार स्वार चाहिए था, उनके लेखा चाहे कुएं में पड़ो। अब जैसे एक बार काशी में अफवाह चला दी, बनारस में एक नादान इन गुरुओं ने, मेरे जैसे अनजानों ने, पेट भरों ने क्या बना दिया कि जो काशी मरता है वो स्वर्ग जाता है। अब देखो जब क्या किया इन प्यारी आत्माओं ने, हमारे पूर्वजों ने, ये सोचा भाई ये संत जन है, विद्वान पुरुष हैं, वेदों के ज्ञाता है, इन्होंने ठीक ही फिर भगवान का कोई संदेश है इनके पास, तभी तो ये कह रहे हैं। तो हमारे पूर्वजों ने अपने माता पिता को उस काशी में अपने गुरुओं के पास ले जाना शुरू कर दिया जब वो वृद्ध हो गए, और उन गुरुओं ने उनके पैसे फिक्स कर दिए, 2 रुपये महीना, पहले 2 रुपये बहुत महंगे कुछ होया करते, 10 रुपये महीना। अब ये देखा उन्होंने ये देखा कि ये 2 वर्ष ज्यादा से ज्यादा 1.5 वर्ष मेरे माता पिता का जीवन है, कोई बात नहीं, इनके निमित्त इनको वहां छोड़ देते हैं, ना जाने कब इनका उम्र आयु पूरी हो जावे, शरीर पूरा हो जावे, तब तक इनका खर्चा देते रहेंगे। तो प्रत्येक के गुरु एक अक्षेत्र के गुरु होते, उन गुरुओं का लिंक फिर वहां उन गुरुओं से होता काशी वालों से, तो वहां जा के उन बुजुर्ग आदमियों को उनके घरों में छोड़ना शुरू कर दिया, और उन्होंने लालच में ये स्वीकार कर लिया कि ठीक है 2 रुपये या 4 रुपये महीना हमें दे देना, हम संभालते रहेंगे, जब तुम्हारे पिताजी शरीर छोड़ जाएंगे तुम्हें संदेशा दे देंगे, आ जाना, ये सीधे स्वर्ग जाएंगे। अब वहां क्या हो गया, भीड़ गणी होगी, एक के गुरु के पास 100-100 बूढ़े हो गए, और बूढ़ा तो व्रत तो एक कहना से बड़ा घर में। अब उन्होंने सोची है तो बात बिगड़ गई, लालच में काम तो बिगाड़ दिया, पर इन्हें संभालना कैसे। फिर उन्होंने केस हकीम बनाई कि यूं कह दो कि भगवान का आदेश है कि गंगा के ऊपर करो तावे है परमात्मा की तरफ से, और जिसने शीघ्र जाना हो ना स्वर्ग में तो वहां आर्य से क्रोध से अपनी गर्दन कटवा लो, सीधा स्वर्ग मिनट में जावे। ये भी तरीका शुरू कर दिया। अब ने सोची भाई उनको मालूम था कि बुजुर्गों से सारे तंग आ लिया करें, तो घरवाले जाओ पिताजी देख ले मरना तो सही, और शीघ्र चले जाओगे ना दुखी हो रहे, वह भी सलाह दे, फिर साथ में गुरुजी सलाह दे, तो बुजुर्ग कह ठीक से बेटा करो काम, उनकी और फीस रख दी 2 रुपये 10 रुपये, जो करो तो लेगा ना शीघ्र उसकी 10 रुपये, वह 10 रुपये उस समय 1000 रुपये के 10,000 बराबर होया करते, तो वो भी स्वीकार कर लिया अपने माता पिता को शीघ्र स्वर्ग भेजने के लिए। अब उन्होंने कैसा तरीका अपनाया कि एक ऐसी आरस टाइप बनाई, गुफा केव बनाई, और उसमें जाकर के गंगा के किनारे पर बिल्कुल पौड़ी बना दी, और उसमें ऐसा सिर रखवा दे उस बुजुर्ग का, बुजुर्ग को से बड़ा जाना चाहो तो कोई आओ, वो तो अथा बना दिया उन्होंने गलकाटन का, अब उसमें सिर रखवा दे, और उसका कंट्रोल बना लिया थोड़ा सा 100-100 फुट की दूरी पर, झाड़ वो जड़े ज्यादा खड़े थे, झाड़ जंखाड़ उनकी आड़ में जाके और वहां पहरा लगा दिया, कोई नहीं जा सके उधर अपना, उन क्योंकि उन गुरुओं का सारा बोलबाला वहां पर। तो वहां खड़ा होकर एक गुरुदेव आवाज लगावा जब उनके वहां गर्दन रखवा दे और कहे कि हे परमात्मा, ये फलाना राम आपके पास आ रहा है, इसको स्वर्ग में शीघ्र स्वर्ग में स्थान देना। वो जान जाते आवाज की पहचान थी, वो फटाफट वो हैंडल घुमा देते और बुड्ढे की गर्दन कट जाती और उसको धक्का दे देते गंगा में, चल भाई तेरे पिताजी का कल्याण हुआ। अब ये भी शुरू कर दिया हमने, क्योंकि हमने तो परमात्मा चाहिए, पिताजी का कल्याण होना चाहिए। वहां पर वो गल कटवाने भी प्रारंभ कर दिए, क्योंकि हमारे प्यारी आत्मा बोड़े बाड़े थे हमारे पूर्वज। अब उसको भी बड़ी मुश्किल से फिर वो उनका वो पकड़ा गया, गवर्नमेंट ने हस्ताक्षेप किया, जब जाकर वो कसाई पड़ा खत्म हुआ था। तो अब जो ये शास्त्र के विरुद्ध साधना करवाई जा रही, उससे भी बुरा काम समझ रहे ना ये, जो पैतृ श्राद्ध निकालना, भूतों की पूजा, देवताओं की पूजा करने से हमारी यही जन्म और मृत्यु, 84 लाख योनियां, पैतृ बनना, श्राद्ध ये भूत बनना, ये समाप्त नहीं हो पा रहा। तो कहने का भाव ये है कि अब हमने किसकी पूजा करनी है, वो परमात्मा कौन है और कैसा है। अभी तक जितने भी संत जन आज वर्तमान में जो लाखों की संख्या में प्राणियों को संबोधित करते हैं, दीक्षा दी हुई है, उनकी सबकी लेखनी, उनके करकमलों द्वारा लिखी हुई पुस्तकें, उनकी अपनी सोच अंतिम उपलब्धि दास के पास उपलब्ध है और सबको कंप्यूटर में फीड करके उनकी सीडी बनाकर पूरे हिंदुस्तान में प्रवेश कर दी, भेज दी है, ताकि भक्तात्मा समझ सके कि वास्तविकता क्या है, शास्त्र क्या बताते हैं और संतों की अपनी अटकल क्या है। तो हमने जो शास्त्र के गुरु साधना वो नहीं करनी चाहिए जिसके कारण हमें हानि होती है। तो उन महापुरुषों ने क्या बताया कि परमात्मा निराकार है, उसका आकार नहीं है, और हमारे चारों पवित्र धर्मों के चारों पवित्र शास्त्र ये बताते हैं परमात्मा आकार में है और मनुष्य जैसा है। उसका नाम भी बता दिया कि उसका ये नाम है वास्तव में। और ये क्या बताते हैं कि परमात्मा निराकार है, और अंग्रेजी बोलने लगे आजकल के ये महापुरुष संतजन क्या कहते हैं, प्रभु का प्रकाश यानी डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट माने देवी प्रकाश यानी भगवान का प्रकाश, प्रभु का प्रकाश। और फिर इनसे कोई पूछता है तो परमात्मा है कैसा, ये कहते हैं परमात्मा तो निराकार है, आकार रहित है, केवल प्रकाश दिखाई देता है और केवल एक धुन सुनाई देती है, यही उस रूप है, यही उसकी अंतिम उपलब्धि, समाधि की भक्ति की अंतिम उपलब्धि है, प्रकाश का दिखाई देना और केवल ये नाद सुनाई देना। अब विचार करना, जैसे कोई ट्यूबलाइट कहे ट्यूबलाइट, और फिर उसे पूछे कि ट्यूब कैसा है, तो वो कहे कि ट्यूब तो निराकार है, लाइट हमने देखा, अंधे ने कुछ नहीं देखा, वो तो बकवाद करे। अब अगर देखा होता, प्रकाश भी देखा होता तो बताता ट्यूब लाइट है, ट्यूब का लाइट है, ट्यूब का प्रकाश है। और ट्यूब कैसा है, एक सफेद सफेद डंडा सा होता है और उसमें से प्रकाश निकल रहा था, वो ऐसे बताता अगर उसने देखा होता, ट्यूब भी देखा होता, यानी प्रभु देखा होता तो प्रभु का प्रकाश बताता है, प्रभु निराकार नहीं बताता वो अनजान, क्योंकि उसकी कोई उपलब्धि नहीं, वो तो सुनी सुनाई व्याख्या एक दूसरे की सुनकर करे। अब जैसे मून लाइट कहते हैं अंग्रेजी में चंद्रमा की रोशनी, मून लाइट, और सन लाइट कहते हैं सूर्य की रोशनी। अब कोई रात्रि में ये कहे कि मैंने चंद्रमा की रोशनी देखी, बड़ी जगमग जगमग हो रही थी, बहुत ही सुहाना मौसम था, क्या बात, बड़ी चांदनी छिटकी हुई थी। और कोई इससे पूछा भी मून कैसा है, वो चंद्रमा कैसा है, वो कहे चंद्रमा तो है ही नहीं, वो तो दिखाई नहीं देता, अंधा है वो, उसने कुछ ना देखा, सुनी सुनाई कहे किसी दूसरे की, और उसकी सुनकर और अंधा शुरू कर दिया, उसकी सुनकर दूसरे अंधे ने, उसकी सुनकर तीसरे अंधे ने, एक अंधा दूसरे अंधे की व्याख्या सुनकर आप कहते फिर कि भगवान निराकार है, यानी वो चंद्रमा दिखाई नहीं देता। अब बताओ सूर्य के बिना रोशनी कैसी, प्रभु बिना प्रकाश किसा, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बनावटी बात है। अब क्या है, एक शेख फरीद नाम के एक मुसलमान धर्म में जन्म था उस प्यारी आत्मा का। देखो थोड़ा सा हमने अपनी बुद्धि को ऊंचा उठाना, ऊंचा करना थोड़ा सा, क्योंकि हमने अब लोक वेद के आधार पर हम इतने आधारित हो गए, हिंदू तो अपनी क्रिया और अपने ही अभी वर्तमान के सब सिस्टम को सर्वोच्च मान रहे, सर्वोच्च मानते हैं, और मुसलमान भाई अपने वर्तमान के सारी क्रिया को सबसे उत्तम मानते, और सिख अपने वर्तमान के क्रियाक्रम को सबसे उत्तम मान रहे हैं, और ईसाई अपने वर्तमान की जितनी भी पूजा उनको उत्तम मानकर कर रहे हैं। ये सोचना चाहिए कि हम पहले एक थे, ना हिंदू था ना मुसलमान, सिख ना ईसाई, तो हमारे पूर्वज पहले ऋषि लोग थे और वो सभी साधना अपने चाहे को चारों जो वर्ण बनाए थे, ये चारों के चारों वर्ण भक्ति करते थे और उनके गुरु हुआ करते थे। केवल वो गुरु लोग जितना उन्होंने ज्ञान था ओम नाम से भक्ति प्रारंभ करवाते थे, वेदों अनुसार साधना ही करवाते थे। तो उस कर्म उन पहले की संस्कार भक्ति के आधार पर, अब चाहे कोई हिंदू का गर्जनों में आज वही आत्मा चलती चलती आ रही है, कभी मृत्यु है कभी जन्म है, कभी मृत्यु है कभी यहां हो गए, कभी अमेरिका में कभी अफ्रीका में कभी पाकिस्तान में कभी हिंदुस्तान में, आत्मा वही हमारी रले मिले संस्कार है, एक दूसरे के साथ हमारे जुड़े हुए संस्कार भोगने के लिए। आज कोई हिंदू है तो कल मुसलमान के घर जन्म लेगा, कोई पाबंदी नहीं भगवान के। आज मुसलमान है वो कल हिंदू के घर जन्म ले सकता है, कोई पाबंदी नहीं। कोई सिख है तो ईसाई का, ईसाई है तो सिख का, ऐसे हम आपस में हमारे रले मिले संस्कार वश ऐसे चलता रहेगा। जो पुण्यात्मा चाहे किसी भी मजहब में है, उनको आज तड़फ है परमात्मा की, वो डटी नहीं डटती, वो कहीं ना कहीं तड़फ में घूम रही है, कोई गुरुद्वारे में, कोई चर्च में, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई व्रत में, कोई रोजों में, कोई नमाज में, यानी अपने कोई नित नियम में, चाहे गीता जी के नित पाठ में अपने को वो लगाए रखा है, क्योंकि उन पर रुका नहीं जा सकता, उनकी उनका स्वभाव पिछले संस्कार से दबाव बना हुआ है, उनकी आस्था इतनी ज्यादा है। अब हमने ये देखना पड़ेगा कि जब तक हम शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करेंगे तो वो सारी व्यर्थ है। शेख फरीद का जन्म मुसलमान धर्म में हुआ, पहले सब ऋषि लोग थे ये, जिनकी आज भी तड़प और भूमि है। और मुसलमान धर्म में क्या बताते हैं कि परमात्मा बेचून है, अल्लाह बेचून है, बेचून माने निराकार। और सिख धर्म में भगवान निराकार, बताओ तू ही एक निरंकार। और ईसाई धर्म में भगवान को निराकार बताओ, कहते हैं व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गॉड। तो ईसाई लोग कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो निराकार है। और मुसलमान और हिंदू पूछ लो, किसी ऋषि का शास्त्र उठा लो, कहते हैं परमात्मा निराकार और केवल प्रकाश दिखाई दे और नाद सुनाई दे, ये इनकी अपनी सोच है। नहीं, अभी आपके सामने आएगा परमात्मा कैसा है। इससे सिद्ध होगा कि वर्तमान के जितने भी महापुरुष संतजन हैं, वो सर सुनी सुनाई व्याख्या कर रहे हैं, उनकी कोई उपलब्धि नहीं, आप स्वयं फैसला कर लोगे। अब शेख फरीद को पता चला, पहले शेख फरीद अपने नमाज करता था, रोजे रखता था, और जैसा भी ईद बकरीद में वो मांस मिट्टी मीट भी खाता था बेचारा, जैसा ज्ञान था उसको, लेकिन फिर भी आत्मा संतुष्ट नहीं थी कि यह भक्ति सही है। एक दिन उसको एक सोफी संत मिला, उस सोफी संत के संबंध में वो काफी देर रहा, काफी दिन लगातार उसने संग किया, सत्संग किया, तो उसने बताया बेटा केवल इन रोजे रखने से और इस नमाज के करण से प्रभु नहीं मिला है, पर अल्लाह नहीं प्राप्त हो सकता, अल्लाह की प्राप्ति के लिए भाई कठिन प्रयत्न करना पड़ेगा बेटा, ये कोई बालका का खेल नहीं है कि वैसे भगवान मिल जाए। जैसा उनकी सोच थी उस महापुरुष की, और उस महापुरुष की काफी सिद्धियां थी, काफी सिद्धियों के कारण वो बड़ा उसकी प्रभुता थी, आम व्यक्ति उसके प्रभावित था। तो शेख फरीद ने सोचा वैसा महापुरुष है, सही बता रहा है, ठीक है। कहने लगे गुरुदेव फिर कैसे करूं भक्ति, आप मुझे दीक्षा दीजियो, मुझे शिक्षा दीजियो। तो गुरुदेव ने कहा बेटा तप से प्रभु मिलेगा, यानी जितना कठिन साधना करेगा उतना ही प्रभु तेरे निकट आएगा। तो शेख फरीद ने गुरुदेव के बताए अनुसार साधना शुरू कर दी, बैठकर तप किया, कभी खड़ा होकर तप किया, दूने लगा कर किया, फिर गुरुदेव का शरीर पूरा हो गया। फिर सोचा भी गुरुदेव ने जो ड्यूटी लाई है प्रभु पाने की, और जिसके लिए हमने सब कुछ त्याग दिया प्रभु प्राप्ति के लिए, और यही काम नहीं बना तो फिर क्या फायदा इस जीवन का। ऐसा सोचकर एक कुएं के ऊपर के वृक्ष की टहनी जा रही थी, उसमें रस्सा बांध के और नीचे लटक जा, लटक गया कुएं में, गहरा पानी था उसमें बहुत गुना, पहले 150-150 फुट की गहराई में पानी जल होता था। वो क्या करे कि सारा दिन उसमें लटक जा और शाम सुबह बाहर आवे, थोड़ा सा अन्न खावे और फिर उल्टा लटक जावे। अब उसने जब देखा कि एक दिन वो बाहर आकर बैठा तो कव्वे आकर बैठ गए। अब वो बाहर आकर बैठ गया, उसका शरीर इतना जीर्ण शीर्ण हो गया जैसे अस्थि पेंदर होया करे, क्योंकि 12 वर्ष में 125 मन अन्न खाया, 125 मन मीन 50 किलो, 50 किलो अन्न और 12 वर्ष में खाना, एवरेज निकाल के देखो रोजाना की कितनी पड़े है, एक तोड़ा भी ना बनता, यानी 10 ग्राम भी नहीं बनता रोजाना का आहार उसका, और उसके कारण शरीर बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया और ऐसा बैठ गया बाहर आकर सुस्तान लग गया। कव्यों ने देखा ये आदमी मरा हुआ है व्यक्ति है, इसकी आंख खा ले, शरीर में मांस तो है नहीं। जो ही कव्य माथे पर आकर बैठे तब उसने देखा कि कव्य तेरी आंख निकाल लेंगे, और अल्लाह मिला नहीं, देख ये क्या बनी है परमात्मा, ये तो जीवन व्यर्थ हुआ मेरा। यूं कहकर कहने लगा, हे कव्यो मेरे शरीर पर कई मांस बचा हो उसको खा लो भाई, मेरी आंख ना छेड़, आंखें मत छूना, हो सकता है मुझे अल्लाह के दर्शन हो, दीदार हो जाऊं।